نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم درشي صلى الله عليه وسلم تقوی کے اوپر بات چلتی رہتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہن میں آتی ہے بات کہ بھائی تقوی پہ بہت بیان ہوتا ہے اور یہی بات حضرت والا رحمۃ اللہ پہ بھی لوگ بولتے تھے کہ تقوی پر بہت بیان ہوتا ہے تو بھائی یہ تو ایک عجیب بات ہو گئی جب اللہ پاک نے ہی کثرت سے جب تقوی کا ذکر کیا اور اپنی چاہت ہی بتا دی اللہ نے اپنے بندوں کو فرما دیا کہ میری جو سب سے بڑی چاہت ہے تقوی سے رہنا ہے کبھی تقوی ٹوٹ جائے تو توبہ کر لو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا صحابہ کرام نصیحت کے لیے کہتے تھے یا اس میں کوئی نصیحت کر دیجیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے واتقوا اللہ واتقوا اللہ پھر تابعین پوچھتے تھے صحابہ کرام سے کوئی نصیحت کر دیجیے ہم آپ کی صحبت میں رہتے تو پھر صحابہ نے فرمایا واتقوا اللہ واتقوا اللہ پھر تبا تابعین نے تابعین سے پوچھا کوئی نصیحت کر دیں مختصر جامع تو پھر انہوں نے یہی فرمایا واتقوا اللہ اور آج تک یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے حج کا سیزن ہو روزے سے متعلق آیات ہوں قربانی سے متعلق آیات ہوں لین دین کے معاملات ہوں بیوی کو طلاق دینی ہو اللہ نہ کرے کوئی بات ایسی ہو جائے یا گواہ قائم کرنے ہوں پیسوں کے معاملات ہوں قرآن پاک میں پوری تفصیل ان باتوں کی یہ تو مختصر خاکہ تھوڑا سا بتایا جا رہا ہے اس کا جز سب چیزوں میں اللہ نے فرما دیا اس کا جو بھی تم یہ معاملات کرو اس میں تقوی کو مقدم رکھنا پوری شریعت گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمیں تقوی کے گرد تو بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی تو شوق تھوڑی ہے تو حضرت والا رحمۃ اللہ یہی ارشاد فرماتے تھے کہ جو سچا شیخ ہوگا کوئی تو وہ تو وقت کا تقاضا بتائے گا کہ اس وقت کا یہ تقاضا ہے اس عمل کا فضائل بھی بیان کرنے بھائی ہے نا لیکن مسائل بھی تو بتانے مسائل کون بتائے گا تقوی کے بارے میں کون بتائے گا تو آدمی اعتراض نہیں کرے کیونکہ یہ اللہ اور رسول پہ اعتراض جاتا ہے خود آپ سن نے ارشاد فرمایا اگر میری امت قرآن پاک کی اگر صرف ایک آیت پکڑ لے یعنی مضبوطی سے اس کو سمجھ لے عمل کر لے پورے قرآن پاک کی بات نہیں کر رہے ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری اس کی بات نہیں کر رہے قرآن پاک کو فرما رہے ہیں اگر میری امت ایک آیت پکڑ لے مضبوطی سے تو اس کے دنیا اور آخرت کے جتنے مہمات ہیں جتنے بھی کام ہیں ان کو بنانے کی نہیں کافی ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی سارے کام بن جائیں گے دنیا کی بھی آخرت کی بھی اور پھر وہ ایک آیت کا کیا حوالہ دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا جو شخص تقوی اختیار کرے گا اور مصیبت سے نکال دیں گے ایک تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا نا تو کافی تھا یا نہیں تھا کافی اللہ نے فرما دیا بس لیکن مزید اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تاکیدن پھر کہا دیکھو کہ میں تو تمہارا ہوں ہی رب اور تم جن کے عاشق اور جن کو تم اپنا محبوب اور پیارا مانتے ہو جو تمہارے اور میرے ہم سب کے محبوب اور پیارے ہیں میں ان کے ذریعے بھی کہلوا رہا ہوں ایک تو میں بھی کہہ رہا ہوں پھر رسول اللہ علیہ وسلم بھی یہ بات فرما رہے ہیں میں نے کہہ دیا مصیبت سے نکال دوں گا پھر اسلم تشریح میں فرما رہے ہیں کہ ایک ہی آیت پکڑ لو پورا قرآن پہ اگر تم سے عمل نہیں ہو رہا تو تقوی پر آ جاؤ جتنے غم پریشانیاں سب نکل جائیں گے تمہارے کافی ہو جائے گا دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی سارے غم ختم کہانی ختم اب اسی طرح بھائی جو اللہ پاک نے جو یہ رمضان کا مہینہ سخت چل رہا ہے شروع اللہ پاک عافیت کے ساتھ گزروا دے تقوی کے ساتھ اپنی رضا کاملہ کے ساتھ اور کبھی کوئی خطا ہو جائے تو اللہ فوری توبہ کرنے کی میں توفیق عطا فرمائے تو اللہ یہی فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتنے پیار سے فرما رہے ہیں اے ایمان والو کتیبہ علیکم الصیام کہ ہم نے جو روزے فرض کیے گئے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم پہ فرض کیے گے تم سے پہلے کی قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے اور اس کا مقصد کیا بتا رہے ہیں لعلکم تتقون تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے تو پتہ یہ چلا کہ تقوی اللہ پاک پچھلی امتوں پر بھی اس نے جو فرض کیا تھا اس کا مقصد بھی یہ تھا صرف امت محمدیہ کا نہیں کہ جو پہلے جو انبیاء کرام آتے رہے اور اس وقت جو روزے فرض کیے جاتے تھے اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان لوگوں کو تقوی حاصل ہو جائے تو اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ بھائی رسول اللہ علیہ وسلم کی शरीयत आने के बाद, कुरान पाक के नाजिल होने के बाद जितनी भी पुरानी शरीयतें थीं दूसरे अंबिया कराम की, वो सारी कलदम हो गई, मनसूख हो गई, हमसे सबको पता है। अब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, शरीयत मुहम्मदी के अहकाम चलेंगे। लेकिन पता चला तकवा वो चीज़ है कि ये पहले भी था और अभी भी है, पहली उम्मतों में भी था फ़र्ज, और रसूलुल्लाह सल्लम की उम्मत को पर भी तकवे को फ़र्ज करार दे दी। तो अल्लाह ने तकवे में कोई तरमीम नहीं करी, तकवा एडवर्टाइज चलता हुआ आ रहा है, तकवा एडवर्टाइज चलता आ रहा है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दो बेटियाँ थीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़िया कुरान पाक में लिखा हुआ है। जब वो दूसरी जगह चले गए थे तो देखा कुछ दो ख़वातीन हैं और उसमें बड़े बड़े जो ताकतवर जो मर्द थे वो पानी भर रहे हैं, लेकिन उनको नंबर नहीं आ रहा था, उनको परेशान थी। तो बहरहाल उन्होंने, वो बहुत माशाल्लाह जिस्मानी क़ुव्वत वाले भी थे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बाद में हिकमत के साथ उनको भी फिर पानी दे दिया कि ये परेशान हो रही हैं और कहा हमारा बूढ़ा बाप है और हम पानी हमें चाहिए। और शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियाँ थी, उनके वालिद साहब के बारे में बताया। तो बहरहाल तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे घर चल लें और खाना वाना खा लें, कुछ इस तरह से वालिद साहब की उनकी जो बीमारी भी हैं वो इस तरह से। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए जाने लगे तो उन ख़वातीन को उन्होंने फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि आप लोग जो हैं वो मेरे पीछे पीछे चलें, मेरे पीछे पीछे, मेरे सामने आके ना चलें। तो वो आगे आगे चलते थे और दो ख़वातीन उनके पीछे चलती थी, नज़रों की हिफाजत हो रही है, तकवा वहाँ से चल रहा है। कहाँ से, तो किस किस तरह से अल्लाह पाक ने मज़मीन खोल के बताया कि अभी की बात थोड़ी है, अभी की बात थोड़ी है। तो लअल्लकुम तत्तकून, तो अल्लाह पाक जो मैं ये जो हम शहरी से लेकर अवतार तक जो भूखे प्यासे रहते हैं, तो ये खाली भूखा प्यासा रहना थोड़ी है। आप सुन ने ये भी फरमा दी, हमारे प्यारे आक़िद हो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने ये बात कही अहादीस मुबारक में फरमाई, जो शख्स रोज़ा रख के भी अगर झूठ गीबत हराम काम अगर उससे नहीं छूट रहा है तो उसको अल्लाह के उसके अल्लाह को उसके फाके की कोई परवाह नहीं है, यानी उसका रोज़ा नहीं करार दे रहा बल्कि फाका है उसको, सिवाय एक हदीस में क्या, सिवाय उसको भूखा प्यासा रहने के कुछ नहीं मिलता। तो लअल्लकुम तत्तकून का आदमी मिज़दाक ही नहीं बन रहा। भाई मकसद तो हम समझें, भूखा हम लोग रह रहे हैं ठीक है, मुबारक है, नमाज कुरान जिक्र अस्कार कर लिए, लोग तलावत कुरान पाक भी इसमें बहुत बढ़ा देते हैं, बढ़ाना चाहिए, जिक्र अस्कार बढ़ा देते हैं अच्छी बात है, जिक्र अस्कार सारी नवाफिल बढ़ा दी अच्छी बात है, लेकिन जो अल्लाह की जो असल मशीयत तो वो ये है तकवा कितना बड़ा। असल जो अल्लाह की जो मशीयत है, अल्लाह तो तकवा देखना चाह रहे हैं, जो अमाल कर रहे हैं मुबारक करें, लेकिन क्या हमारा इस रमज़ानों में तकवा बढ़ा, गीबतों में कुछ कमी आई, बदनज़री में कमी आई, लोगों पे इल्ज़ाम लगाना बदगुमानी रखना बुख्स कीना हसद उसमें कुछ कमी आई, हराम खाने में कमी आई, सूद खाने में कमी आई, रिश्वत लेने में कमी आई, किसी मामलात में हमारे कमी आई, मोबाइल पे जो चीज़ें हम देखते रहते हैं बदनज़री करना, आपको बोले ये हम तो कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं देखते, कोई गंदी चीज़ भी नहीं देख रहे हैं रमज़ानों में, हम तो खाली शक्लें देख रहे हैं या अखबार पढ़ लेते हैं, ये शक्लें शक्लों वाला अखबार पढ़ लेते हैं या ख़बरनामा सुन लेते हैं। तो भाई ये भी तो हराम है, जानदार की तफसीर आ रही है, इसमें भी लोग उलझन का शिकार रहते हैं। भाई लड़की औरत को देखना और गंदी चीज़ें देखना, फोहश चीज़ें देखना, वो तो बहुत ही ज़्यादा पलीत और गंदा काम है, वो भी बहुत ही ज़्यादा गुनाह का काम है। लेकिन अगर कोई आदमी घोड़ा कुत्ता गधा या किसी आदमी आदमी को देखता है या औरत औरत को देखती है तो वो भी हराम है, वो भी हराम है। किसी भी जानदार की असलम की आदिशों बार गए, किसी भी जानदार की शक्ल बनाना हराम है, जानदार का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है इसमें। या फिर कहा जाएगा हदीस मुबारक अफसलम ने फरमाया कि तुम ये तस्वीरें बनाया करते थे, अब अल्लाह पाक हुक्म देंगे हशर वाले दिन, अब इसमें तुम रूह डाल के दिखो। और फरमाया अल्लाह पाक फरमाएंगे तुमने मेरी खलाकियत में तख्लीक करना तो मेरा काम है, तुमने उसमें तुम कैसे असरअंदाज हुए, मुसव्वरी तुमने क्यों की, मुसव्वर तो मैं हूँ, मैं ही बनाता हूँ फिर मैं ही रूह डालता हूँ, तुमने मेरी इन चीज़ों में क्यों तुमने हाथ डाला। अब तुमने खाका बनाया तो ठीक है, फ़ोटो तुमने खींची तो उसमें रूह डालो, नहीं डाल सकते तो अजाब भुगतो, है ना। तो इसको लोग गुनाह ही समझ रहा आजकल, जब गुनाहों की कसरत हो जाती है किसी चीज़ की तो फिर अहमियत ही ख़त्म हो जाती है कि ये भी कोई गुनाह है। तो इसी तरह आजकल तफसीर कशी, फ़ोटो कशी और म्यूज़िक, और अगर कोई आदमी कोई दीनी चीज़ भी देख रहा होता है आजकल तो पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक हल्की हल्की चल रही होती है, कहाँ तक बचेगा। हैरत है ऐसे दीनदार लोगों के ऊपर भी कि दीन की बातें भी कर रहे हो और पीछे जो है वो कुछ ना कुछ हल्की म्यूजिक रिदम चल रहा होता है। ये पत्नी कैसे दीनदार लोग हैं, दीनदार हैं या पत्नी दुकानदार ज़्यादा लग रहे हैं? दीनदार तो नहीं है, दुकानदार हैं ये तो। क्या इनको इतनी सी बात नहीं पता? गाने बजाने की वजह से आप सल्लम फरमा रहे हैं मेरी उम्मत के बाज लोगों को सुअर और बंदर बना दिया जाएगा क़ुर्ब क़यामत, ये रसूल अल्लाह सल्लम इरशाद फरमा रहे। तो साहबा कराम परेशान हो गए थे, उन्होंने कहा रसूल क्या वो मुसलमान होंगे? फरमाए हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह का इकरार करने वाले, नमाज रोज़े वाले। साहबा कराम और परेशान हो गए, रसूल क्या वजह होगी इतनी बड़ी जिल्लत की? क्योंकि हम गौर करें तो बनी इसराइल में यहूदियों को बनाया था सुअर अल्लाह पाक ने अल्लाह से धोखेबाजी की वजह से, लेकिन आज मुसलमानों को भी आप सलम फरमा रहे हैं मेरी उम्मत के लोगों को सुअर और बंदर बना दिया जाएगा। फिर सहाबा कराम ने परेशान होकर पूछा किन गुनाहों की वजह से? तो बहुत बड़े गुनाह नहीं बताया आप ने, क्या फरमाया कि मौसीकी और गाना बजाना, मौसीकी नाच गाना, मौसीकी नाच गाना और शराब नोशी, ये दो चीज़ें बताई थी आप ने। फिर ये लोग एक रात नाच गाना करके मौसीकी करके और शराबें पिए के सोएंगे ये लोग, और फिर जब सुबह उठेंगे तो सुअर और बंदर बने होंगे मेरी उम्मत के लोग नमाज रोज़े वाले। तो डरना चाहिए कि अल्लाह ना करे कि हम उस वक्त ये नाच गाना मौसीकी म्यूज़िक सुन रहे हो, अगर वही तजल्ली आ गई जिस वक्त का आप ने जो एक इशारा दिया था या जो डराया था जो वहीद, अगर अल्लाह ना करे वो वही लम्हात अगर अभी आ गए तो फिर क्या होगा जिस वक्त मैं बैठा हुआ ये काम कर रहा हूँ? तो लोग देख के कहेंगे यार ये क्या हुआ, उसकी हैसियत क्यों बदल गई, क्या हो गया इसको? तो डरना चाहिए, लेकिन वही डरना चाहिए, वही नहीं तकवा होगा तो डरेगा ना, यही जड़ है दिल में, अल्लाह का खौफ रखते हुए अमल करो। क्या वक्त नहीं गुजर रहा जो लोग ये चीज़ें नहीं देख रहे या तफसीरें नाच गाना नहीं देख रहा? इस दौर में भी तो ऐसे लोग हैं 2024 में जो इन चीज़ों से बचे हैं, क्या वो मर गए क्या वो, या उनका दम निकल गया, क्या हो गया उनको? माशाल्लाह हज़रत वाला रहमत इरशाद फरमाते थे और मौलाना रूमी रहमतुल्लाह का एक शेर का खुलासा था कि अल्लाह पाक मुजाहदात के ज़रिए तकवे के बरकत से एक जान लेंगे तुम्हारी। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ने एक फ़ारसी शेर का तर्जुमा है कि थोड़ी सी नफ्स को तकलीफ़ होगी, मतलब ये गुनाह से बचने में नफ्स को तकलीफ़ होगी थोड़ी सी, एक जान तुम्हें लगे कि मेरी जान निकल गई, लेकिन उसके जवाबन अल्लाह पाक तुम्हारे कल्ब के अंदर तुम्हारे जिस्म के अंदर सैकड़ों जाने अता फरमा देंगे। एक जान के अंदर तुम अपनी सैकड़ों जाने जानों का मज़ा पाओगे। तुम जो एक जान अल्लाह पर फिदा करता है अल्लाह उसको हज़ारों जाने उसको अता फरमा देते। असल में भाई ये बातें समझ में उसी वक्त आती हैं जब बंदे का काल हाल बनता है। बातें बनाने में क्या है, जब आदमी अमल जब करता है और अमल की भट्टी से जब गुजरता है तो फिर ये बातें जो हैं फिर आदमी की समझ में आती हैं। खुद हज़रत मौलाना अशरफ अली थानी साहब रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे कि मैं हाजी साहब से अक्सर ऐसी बातें सुनता था जो मेरी समझ से बाला तर थी, लेकिन अदब की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाता था, समझ नहीं आती थी। फरमाया लेकिन जब अल्लाह पाक ने मुझे वो मुकाम दिया और जब मैं खुद उस हाल से गुजरा तो बात समझ में आ गई। मतलब क्या कि बाज़ दफ़ा आदमी जब उस हाल पर उस मुकाम पे पहुँचेगा तो फिर समझ में आएगी बात। बाज़ दफ़ा कुछ बातें ऐसी होती हैं कितना ही आदमी समझाता रहता है लेकिन समझ में नहीं आती जब तक वो आदमी खुद उस हाल से नहीं गुजरेगा। अल्लाह, तो ये तकवे के जो मामलात हैं तो अल्लाह पाक की क्या रहमत है कि जो 12 महीने जो इस्लामिक होते हैं हम देखते हैं तो हर इस्लामी महीने में कोई ना कोई अल्लाह पाक ने बशारत दी और उसके फ़ज़ाइल रखे। जैसे अभी ये हज का ज़माना भी आने वाला है इंशाअल्लाह ताला, ज़िलहज्जा, तो इसमें देखा जाएगा भाई कितनी फ़ज़ाइल बताए 10 रातों के, बेशुमार इसके फ़ज़ाइल हैं कि जो इन 10 रात शुरू की जो 10 तारीखों में इबादत करता है, रोज़े रखता है या जो भी मामलात करता है किस कदर उसको अजर व सवाब है उसका, वो फिर अल्लाह पाक ने अलग बताया। तो पूरे 12 महीनों की कुछ ना कुछ फजीलतें और खसूसियात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि ये बहाने कितने अल्लाह पाक ने रखे हैं, मरने से पहले पहले अल्लाह पाक हमें कितने चांस दे रहे हैं ये समझने। खुद अल्लाह पाक ने कुरान पाक में एक जगह फरमाया क्या हमने तुम में से किसी को क्या इतनी उम्र नहीं दी थी जिसको जो समझना होता वो समझ लेता और अमल कर लेता। यानी अल्लाह फरमा रहे हैं मैं अक्सर लोगों को जो उम्र देता हूँ काफ़ी तवील लंबी उम्र देता हूँ ताकि वो सोच समझ लें, अक़ल इस्तेमाल कर लें, दुनिया और आखिरत के मामलों को समझ लें। वो तो बहुत कम लोग होते हैं जो कम उम्र में चले जाते हैं लेकिन अक्सरियत को तो माशाल्लाह लंबी उम्रें मिलती हैं सबको। तो ये चीज़ सोचने वाली है। तो तकवे पे बात हो रही है तो आज हमें देखना है कि जो रमज़ान शरीफ के जो ये रोज़े हम गुजार रहे हैं कि जो काम हम रमज़ानों से पहले कर रहे थे क्या उसमें कोई कमी आई, LCD जैसे घरों में लोगों के टीवी चल रहा होता है कि सब देखें हम लोग कि हमारे घरों में टीवी अभी भी चल रहा है या नहीं। ये है तकवा, लअल्लकुम तत्तकून, इसमें इजाफा हुआ नहीं हुआ, टीवी चल रहा है नहीं चल रहा। भाई ठीक है, अगर घर वाले नहीं मान रहे, घर वालों को सोबत नहीं मिल रही बेचारों को, तो कोई मसला नहीं भाई। कम अज़ कम जो लोग सोबतों में आ रहे हैं या जिनको दीनी शऊर हासिल है भाई, तो वो उस कमरे में ना बैठे। मशायख फरमाते टीवी चल रहा है नहीं मान रहे घर वाले, प्यार मोहब्बत समझा नहीं मान रहे, कहना ठीक है मैं अफ्तारी टीवी वाले कमरे में नहीं करूँगा, बाहर आ जाएं आप, बाहर करने उस कमरे में ही मत जाएं जहाँ टीवी चल रहा हो। खुद नहीं भाई इसलाह कर सकते किसी की, अपनी इसलाह कर ले, दूसरों को नहीं बचा सकते, खुद बच जाए बस। और यही फर्जे हैं, यही फर्जे हैं, अब तक यही घरानों में देखते हुए आ रहे हैं, बचपन से हम देख रहे हैं ये तमाशा कि टीवी चल रहा होता है और दस्तरखान बिछा हुआ होता है, महरम नामहरम सालियाँ भाभियाँ खानदान कवन सब दावत अफ्तार पार्टी हो रही होती हैं, सब हल्ला गुल्ला हो रहा होता है, लानत की सब बद्दुआ में आ रहे होते हैं आपस वसलम की बदनजरी करके, आपस में इख्तलात हुआ हुआ होता है, फिर दस्तरखान बिछता है, सब एक साथ बैठते हैं और LCD टीवी चल रहा होता है, और फिर उसके बाद हाथ भी उठे होते हैं लोगों के, और फिर जब अफ्तार का वक्त होता है तो वो अजान से नहीं होता कि अजान की आवाज़ तो सही आती नहीं है, तो हम टीवी से अफ्तार करते हैं, तो फिर टीवी की जो अजान होती है अल्लाह अकबर उससे फिर जो है सब अफ्तार कर रहे हैं और बदनजरी भी कर रहे हैं, म्यूजिक भी चल रही है उसमें ऐड भी आ रहे हैं। अब क्या होगा ऐसे अफ्तार का, वो तो अल्लाह को पता है किसका रोज़ा कबूल है किसको नहीं, लेकिन भाई ज़ाहरी शरीयत तो यही कह रही है कि तो ऐसे रोज़े तो मुँह पे दे के मार दिए जाएंगे कि कितने गुनाहों की आमाजगा तुमने बना दी। अफ्तार पार्टी है ये, तो अफ्तार पार्टी करो भाई, कौन मना कर रहा है खाने पीने को, लेकिन मर्द अलग औरतें अलग, टीवी ना हो हराम काम ना हो, इख्तलात कर दिया रोज़े में वो भी, और इसको गुनाह ही नहीं समझा जा रहा। एक हदीस पाक का खुलासा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अर्श को उठाए हुए जो फरिश्ते हैं हामिलीन अर्श, वो फरिश्ते बड़े बड़े जिन्होंने अर्श को उठाया है, अल्लाह पाक उनको हुक्म फरमाते हैं कि इस वक्त मेरे गुनहगार बंदे जो रोज़ेदार हैं, इस वक्त ये लोग दुआएं कर रहे हैं। इस वक्त की दुआ हो रही है अफ्तार के वक्त से पहले, चंद मिनट पहले वक्त कबूलियत होता है, उस वक्त की बात हो रही है कि मेरे गुनहगार बंदे रोज़ेदार बंदे या जब भी समझ लें कि भाई बहते पूरा रोज़े की हालत में अल्लाह पाक दुआ करते हैं, लेकिन अफ्तार के वक्त ख़ास अहतमाम हो जाता है दुआओं की कबूलियत का, तो अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत से अपने बंदों की मोहब्बत में उन फरिश्तों से कहते हैं जिन्होंने अर्श के पाए उठाए हैं कि इस वक्त तुम लोग मेरी हमदो सनात मेरी जिक्र करना मेरी तस्बीह करना बंद कर दो, मुलतवी कर दो। बताइए जितने फरिश्ते हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई बयान करते हैं हर वक्त और अल्लाह का जिक्र बुलंद कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक अपना जिक्र मौकूफ़ करा रहे हैं उन फरिश्तों को जिन्होंने अर्श के पाए उठाए हैं, और अल्लाह फरमाते हैं इस वक्त मेरे जो बंदे रोज़ेदार जिन्होंने रोज़े रखे हुए हैं, जब ये दुआएं मांगे तो इनकी दुआओं पे तुम लोग सिर्फ एक काम करो, कहो आमीन। क्या कहने अल्लाह की रहमत के, हमारे हजरत प्यारे मुर्शिद आरिफ़ुल्लाह हजरत अक़दस मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे, देखो कोई दुनिया का कोई बादशाह होता है तो वो दरबारी जब उसकी सनाखानी करेंगे उसकी तारीफ़ करेंगे तो वो कभी नहीं कहेगा कि मेरी तुम ये सनाखानी बंद करो जो मैंने वक्त रखा है अपनी तारीफ़ का। बड़े से बड़ा बादशाह हो वो तो खुश होगा, खूब माल व दौलत देगा, खूब मेरी तारीफ़ करो मेरी शान में कसीदे पढ़ो, लेकिन अल्लाह पाक की मोहब्बत हम गुनाहगार बंदों के साथ कि अपना जिक्र बंद करवा दिया अल्लाह ने कि उस वक्त मेरी किबरियाई मत बयान करो, मेरे जो बंदे रोज़े जिन्होंने रखे हैं वो दुआएँ मांगे उन पर आमीन कहो। लेकिन भाई अल्लाह की तो ये मोहब्बत, और वो जो रोज़ेदार साहिब और साहिबा जो है वो तो टीवी की तरफ देख रहे हैं भाई, वो तो लिपस्टिक मेकअप की वजह लड़कियां औरतें आ रही हैं जो वो दीनी प्रोग्राम कर रही हैं और साफा बांध के मिस्री स्टाइल में स्टाइलिश तरीके से साहब बहादुर, तो वो देख रहे हैं हाथ भी उठे हुए दुआ के लिए, टीवी पे नज़र है और कह रहे भाई पकौड़े तो लाओ दही तो लाओ ये चीज़ कम है, ये क्या हो रहा है, ये फरिश्ते इस वक्त आमीन कहेंगे ऐसी दुआओं के ऊपर ऐसे रोज़ेदारों को। भाई जब अल्लाह की ऐसी मोहब्बत है, इतने बड़े बड़े फरिश्ते मुंतजर हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि दुआ मांगे तो आमीन कहे, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को अल्लाह ने हमारे नहीं हमारे ताबे कर दिया और हमारी अपनी रहमत से दुआओं को कबूल करवा रहे हैं अल्लाह पाक, तो भाई हमें भी तो थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड शो करना चाहिए, घटियापने का मुजाहरा ना करें अल्लाह को और फरिश्तों को। क्या अल्लाह की सोचेंगे अल्लाह हमारे बारे में कि मैं तो इतने इतनी करम फरमा रहा हूँ अपने फरिश्तों को, मैंने अपना नाम लेने के लिए रुकवा दिया, इसको देखो ये तो मोबाइल से बाहर नहीं निकल रहा, ये तो टीवी से ही बाहर नहीं निकल रहा, ये तो नाच गाने से ही बाहर नहीं निकल रहा, ये तो गीबत से ही बाहर नहीं निकल रहा, ये तो हराम कामों से ही बाहर नहीं निकल रहा, फल लेने जा रहे हैं हाजी साहब तो देख रहे हैं औरतों को बदनजरी चल रही है, केले भी उठा रहे हैं और औरतों को भी देख रहे हैं, अमरूद भी उठा रहे हैं और अमरूद औरतों को भी देख रहे हैं, भाई लड़कियों को भी देख रहे हैं, ये तो हजरत वाला रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे कि दो गुना तो ऐसे इंटरनेशनल इतने लजीज है हमारे हम लोगों के ऊपर कि ये तो 12 महीने 365 दिन चलते ही चलते हैं तो रमजानों में भी ये जान नहीं छोड़ते। एक फरमाए एक तो बदनफरी और दूसरा गीबत। बदनफरी चाहे वो टीवी पर हो चाहे मोबाइल पर हो चाहे चलते फिरते हो, खवातीन से नजरों की पावत, जो बेचारे अल्लाह वाले कुछ लोग जो वैसे ही 11 महीने नजरों की पावत करते हैं तो वो तो और एहतमाम करते हैं, उनकी बात नहीं हो रही। लेकिन आम जो मुसलमान हम लोग हैं तो हम लोगों को तो भाई अक्सर का यही हाल होता है कि गीबत भी बराबर चलती रहती है रमज़ानों में भी 11 महीने की तरफ से और बदनफरी भी चलती रहती है। तो फिर लअल्लकुम तत्तकून का जो मिज़दाक फिर हम नहीं बनेंगे, फिर वो अल्लाह का मकसद हासिल नहीं हुआ। फिर हमें सोचना है लाख हम दिन में 6-6 पारे पढ़ रहे हैं, इस वक्त माशाल्लाह लोग ऐसे ऐसे हैं कोई 10 दिन में कुरान पाक ख़त्म करता है, कोई 4 दिन में, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह मुबारक है भाई, मना थोड़ी कर रहे हैं। आप सल्लम खुद फरमा रहे हैं कि तुम्हारे अमाल में से सबसे बेहतरीन अमल, तुम्हारे जितने भी अमाल उनमें सबसे बेहतरीन अमल ये है कि कुरान पाक को तरतीब से पढ़ो और मौत तक इस तरह पढ़ना आप सल्लम की सुन्नत है। सूरह फातह से शुरू किया, वन्नास पे ख़त्म कर दिया, फिर दोबारा सूरह फातह से कुरान पाक को हमने शुरू कर दिया। आप सल्लम फरमा रहे हैं इस तरह से पढ़ना यहाँ तक कि तुमको मौत आ जाए, ये तुम्हारे अमाल में से बेहतरीन अमल है। सूरह यासीन पढ़नी है, सूरह वाकिया पढ़नी है, सूरह मुल्क पढ़नी, भाई वो अलग से पढ़े, ये है आप सल्लम की सुन्नत। तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो कुरान पाक पढ़ रहे हैं, मुबारक है, जिक्र अस्कार नवाफिल हमने बढ़ा दिए, मुबारक है, तरावियाँ पढ़ रहे हैं, बहुत मुबारक है। लेकिन भाई ज़बरदस्त मुबारकबाद उसके लिए जो लअल्लकुम तत्तकून का मिज़दाक बनेगा और अपने तकवे को बढ़ाएगा, गुनाहों से बचने की कोशिश करेगा। वो हम लोग देखें कि हमने अपनी इबादत तो हमने बढ़ाई माशाल्लाह मुबारक है, लेकिन क्या हमने तकवे को भी बढ़ाया, ये है सवाल, ये चेक करना है। मोबाइल छूटा नहीं छूटा, कम से कम इस कमबख्त लानती चीज़ को एक महीने की नहीं छोड़ दें फिलहाल। उसकी वजह क्या है, हजरत ने अजीब मिसाल दी कि देखो मशायख ये फरमाते हैं बड़े बड़े अकाबिर कि किसी तरह अल्लाह पाक से अहद करके तौबा इस्तग़फ़ार करके रुजूलल्लाह होके अपने आप से अहद कर लो, अल्लाह से वादा कर लो, अल्लाह पाक मैं जान लड़ा के इसे एक महीने में तकवे से रहने की कोशिश करूँगा। तो फरमाया अल्लाह के खौफ की वजह से, अल्लाह की मोहब्बत में जो तकवे से सही तरह से रहने का अहतमाम करेगा रमज़ानों में, तो अल्लाह के फजल से यही बईद है कि जिसका जितना शानदार रमज़ान गुजरेगा उसी तरह से फिर उसकी बरकत से अल्लाह खुश होकर बाकी जो बैलेंस जो 11 महीने बचे हैं अल्लाह उन अमाल की तौफीक देंगे जो उसने रमज़ान में किए थे। ये रमज़ान की इतनी बरकतें होती हैं, क्यों रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है। ऐसे तो भाई सारे महीने अल्लाह के, शाबान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको मेरी खास नस्बत हासिल है, लेकिन रमज़ान के बारे में फरमा रहे हैं कि रमज़ान ये खास अल्लाह का महीना है, तो ये अल्लाह की स्पेशल चीज़ है समझ ले रमज़ान। तो इसमें कम अज़ कम हम लोग गंद ना करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो खास चीज़ है, अल्लाह की कितनी बड़ी ज़ात है, कितनी बड़ी पाक ज़ात है, उसको तो गंदा ना करें इस महीने को गंदे अमाल से, बदनबरी से, हराम कामों से। तो फिर क्या होगा कि अल्लाह पाक खुश हो गए कि इसने मेरे जो मेरा खास महीने था रमज़ान इसमें उसने मेरा अदब किया, मेरे महीने का अदब किया और तकवे से रहा, तो अल्लाह पाक खुश होके फिर उसको 11 महीने भी वैसे ही तकवा वैसी तौफीकात की बारिश रखेंगे। तो और जो इस महीने में भी ऐसे ही रहा जैसे लंगड़ा लूला आदमी रहता है 11 महीनों में, घड़ी में औलिया घड़ी में भूत, तो भाई फिर वो उम्मीद फिर क्या कह सकते हैं, फिर यही कहा जाएगा फिर 11 महीने भी उसके ऐसे ही गुजरेंगे। फिर इसी तरह जिस तरह हजरत वाले अक्सर फरमाते थे, इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि जिसका जैसा अरब फिर तकवा, जिस तरह अरब में जिसका तकवा जैसा रहेगा, जैसे वो 15 दिन के लिए उम्रे के पैकेज पर गया या हज के नहीं जाता है वो, तो वहाँ जहरी बात है अनवारात होते हैं, अनवारात की बारिश होती है, अल्लाह का खौफ होता है, तो जो वह बहुत तकवे से रहेगा, अदाब के साथ रहेगा, तो जिस अदब और मोहब्बत के साथ उसने हज उम्रा किया और जो वहाँ पे प्रोटोकॉल उसने पेश किया, तो अल्लाह पाक खुश होके उसके तकवे को वैसा ही तकवा फिल अजम भी उसको वैसी अता फरमा देते हैं कि पाकिस्तान या जहाँ से भी वो आए अपने मुल्क से ओरिजन से, अल्लाह पाक उसको वहाँ पर भी उस मकामात पर आने के बाद भी वही चीज़ें दोबारा अता फरमा देते हैं, खुश हो गए कि इसने मेरे घर का अदब किया था। और जो वहाँ जाके भी हराम का मुबतला रहा मक्का मदीना शरीफ में, तो फिर आके भी फिर अल्लाह उसके हाल पर रहम करे। तो इसलिए अल्लाह फरमाते थे कम अज़ कम रमज़ान को खूब अच्छी तरह से गुजारने की कोशिश करो तकवे से, और हज उम्रे पे जाओ तो वहाँ पर भी, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक फिर खुश होके उसकी रहमत से यही उम्मीद है कि अल्लाह पाक दोबारा फिर उसको वही अमाल की तौफीक अता फरमाएंगे। अल्लाह, तो भाई ये हम लोग अपना अपना मुहासबा करें और देखें कि हम लोग कितनी बदनफरी इस वक्त रमज़ानों में हम कर चुके हैं। इस वक्त अभी पहला अशरा शुरू दूसरा अशरा शुरू होने वाला है, पहला अशरा जो है वो इख्तिताम पज़ीर होने वाला है, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अल्लाह की रहमत के क्या कहने कि कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो अल्लाह पाक माफ़ ना करें अगर बंदा तौबा करे तो जो भाई जो ख़ताएँ हो गई हैं हमसे, तो अल्लाह से एक दफ़ा बैठ के कह दे अल्लाह पाक इस दफ़ा भी मेरे रमज़ानों भी उस तरह से नहीं गुजारे जिस तरह से मुझे गुजारना चाहिए था, तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमा दे, तो अल्लाह माफ़ फरमा देंगे, और अल्लाह जो भी रमज़ान के दिन और घड़ियाँ बची हैं इस तरह से मुझे रहने की तौफीक अता फरमा जो तेरी चाहत है। तो ये और गीबत से ख़ास तौर पर बचें, घर वालों कोई बोले भी घर वाला गीबत करे कुछ करे तो टोक देंगे, देखो भाई कम से कम रमज़ानों में तो ना करो गीबत, क्योंकि गीबत करना और सुनना दोनों जायज़ नहीं है। हाँ मजबूरी है कोई तो वो एक अलग मामला है, कोई शरी मजबूरी है तो आम हालात में बचें और मोबाइल को बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि वही बात कि ये हाथ में रहेगा तो ना चाहते हुए भी बदनजरी होती रहेगी। तो वही अक्सर बताता रहता हूँ, दो मोबाइल रखें, एक सादा फ़ोन रखें, एक मोबाइल रख लें, वक्त ज़रूरत मोबाइल को इस्तेमाल करें जो एंड्रॉयड है, कभी कोई मजबूरी भी आ जाती है तो उसके वो मजबूरी की नहीं अलग रखें, लेकिन हर वक्त जेब में सादा वाला मोबाइल रखें अगर कोई शरी उज़ुर नहीं है तो, कोई मसला है तो बताएं, क्योंकि मोबाइल के होते हुए बदनजरी के होते हुए नामुमकिनात में से कोई अल्लाह का वली बन जाए, कोई किसी को तकवा हासिल हो जाए, मौत तक उसको तकवा नसीब नहीं होगा। ये एक इतना सा जो एक पॉकेट में मोबाइल रखते हैं एंड्रॉयड सेट, ये हमारे तकवा के पहाड़ जैसे तकवे को उड़ाने के लिए काफ़ी है। तो दुनिया और आखरत दोनों तबाह कर रहा है, ये इतना बड़ा दज्जाली फितना आ चुका है। अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमों की हिफाजत फरमाए। इसने तो वो तबाही मचा दी है कि अभी सवात वगैरह की तरफ जाना हुआ था चंद दिन पहले, थोड़ा सा पहले तो वहाँ कुछ पठान खां साहब लोग मिले तो मैंने बड़ी तारीफ़ करी, माशाल्लाह यहाँ बड़ी अच्छी दीनदारी है और ये है वो, तो वो बेचारे बड़े अफसरदा होकर कहने लगे सब ज़ाहिरन देख रहे हैं आप, कह रहे हैं कि ये पहले कभी होता था, ये तो सब ज़ाहिर ही है, अब सबके हाथों में मोबाइल आ चुका है, हमारी घर की औरतों लड़कियों बच्चों के पास भी सबके पास मोबाइल आ चुका है अभी। हाँ कहेंगे हाँ इतना ज़रूर है कि आपके शहरी इलाकों की तरह अभी फहाशी रियानियत ज़ाहिरन इतनी नहीं फैली है, लेकिन घरों में सब ऐसे ही हो चुका है, गंद शहवत भड़क चुकी है, पैंटे पहनी हुई लड़कियां औरतें फिर रही होती हैं घरों के अंदर का, उन्होंने फिर मुझे हाल बताया, कह रहे हैं कि ये चुपके चुपके मोबाइल देख देख के सब अंदर से सबके अंदर शहवत की आग लग चुकी है, सब पागल हो चुके हैं। तो मोबाइल हर कच्चे पक्के घर में गांव में देहात में जहाँ खाने को रोटी नहीं है, लेकिन वहां पर मोबाइल पहुंचा हुआ है। अब ये खुफिया शैतान है, इबलीस ऐसा मलून दज्जाल है ये कि जहां जहां जिस जिसके हाथ में पहुंचेगा सबको गरक करता चला जाएगा, अल्लाह से दूर करता चला जाएगा। तो वहां पर भी लोगों के दिलों में इस्लाम को लेके बगावत आ रही है, पैंट शर्ट लड़के पहनना है वहां पर, और स्कूल ऐसे खुलना है जो इंग्लिश तालीम दी जा रही है, और टखने छुपे हुए होते हैं, दाढ़ियां मुड़ा रहे हैं, और वो अब इतना कहना है हमारी जो यंगस्टर है नौजवान नस्ल वो इतना फॉलो नहीं कर रही इस्लाम को, हर वक्त इनके हाथों में मोबाइल रहते हैं, कह रहे हैं ये आपकी अच्छी सोच है और अभी ये कह रहे हैं, लेकिन 10 साल जो अगर ये हालात चलते रहे आप 10 साल के बाद आके देखिएगा आपको सब कुछ बदलाव मिलेगा। तो जो काम बड़े बड़े दुश्मन नहीं कर पाए मुसलमानों को तबाह करने के लिए, ये खामोशी से इस मोबाइल ने कर दिया, काम उतार दिया, वो काम तबाह मचाइए, कोई नहीं बचा हुआ इससे इल्ला माशाल्लाह अल्लाह जिसको बचाए। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि औलादों को बर्बाद करने वाले भी कौन होते हैं, अक्सर भाई ये चीज़ें देने वाले कौन हैं, घर में गंदा माहौल देने वाले, टीवी एलसीडी नाच गाना मोबाइल कोई एजुकेशन सिस्टम कौन कर रहा है सब, ये घर का बाप माँ वालदेन पहले बाप। तो ये सोचने वाली बात है भाई, अल्लाह के आगे हमें जवाब देना है, ये दुनिया तो चंद रोज है, सोचना चाहिए कि हमारे मामला किस तरह से चलेंगे। ये हमारे हजरत वाला रहमतुल्लाह किताब है रमज़ान माह तक़वा, इसमें से कुछ थोड़ा सा ये दिल में आया था कि पढ़ दूं। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह ने बहिश्ती ज़ेवर में रोज़े के बाब में लिखा है कि रोज़ेदारों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अर्श के नीचे बुलाएगा, क़यामत के दिन अर्श के नीचे बुलाएगा और फरमाएगा ए रमज़ान के रोज़े रखने वालों तुम हमारे मेहमान हो, क्योंकि तुमने अपना पेट जलाया था, खाना खाते हुए भी हमारे खौफ से नहीं खाया था, खाना होते हुए भी हमारे खौफ से तुमने खाना नहीं खाया, तुम हमारे अर्श के नीचे आओ, तुम्हारे लिए दस्तरखान बिछा दिया गया है। यानी क़यामत के दिन जब और लोगों का हिसाब किताब हो रहा होगा और सूरज की गर्मी से खोपड़ी खोल रही होगी तो रोज़ेदारों के लिए अर्श के साय में दस्तरखान बिछाया जाएगा, जहाँ अर्श का साया होगा वहाँ हिसाब नहीं होगा और जहाँ हिसाब होगा वहाँ साया नहीं होगा, लिहाजा अर्श का साया मिलना ये दलील है कि साये वाले सब जन्नत में जाएंगे, क्योंकि जहाँ साया होगा वहाँ हिसाब नहीं होगा और जहाँ हिसाब होगा वहाँ साया नहीं होगा। باب لوگ یہ شہری کے بارے میں لکھا ہے، شہری کھانے کی فضیلت۔ جو لوگ عاشق نیند ہیں یا نیند کے بادشاہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی شہری کھائے بغیر روزہ رکھ لیں گے، لیکن یہ بڑی محرومی کی بات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شہری کھاتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت برستی ہے، جو شہری کھاتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت برستی ہے، اور فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے نالائقوں کے لیے بد دعا بھی۔ ایک مرتبہ مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرا قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر تیسرا قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، آج یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے تین بد دعائیں دیں جن پر میں نے آمین کہی۔ پہلی بد دعا یہ تھی کہ وہ شخص نامراد ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کا انتظام نہ کر لے، ایسے شخص کو اللہ نامراد کر دے۔ میں نے کہا آمین، تو جبرائیل علیہ السلام کی اس بد دعا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین بھی شامل ہو گئی۔ لہٰذا جن کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں اور بوڑھے ہو چکے ہیں، آج سے عہد کر لیجئے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو خوش کرنا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، یہ جو اکثر جو مرد بھی اور خواتین بھی اس مرض میں مبتلا ہیں، اپنے بوڑھے والدین کے طرف یہ لوگ نظر التفات نہیں کرتے اور دنیا داری کے اور بہانے رکھ دیتے ہیں، تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو کیا ایسے لوگوں کے نماز روزے قبول ہوں گے؟ سوچنا چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے دوسری بد دعا یہ دی کہ وہ شخص نامراد ہو جائے جو آپ کا نام سن کر آپ پر درود شریف نہ بھیجے۔ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیجیے، یعنی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے، ایسا شخص بھی نامراد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اب یہاں مختلف محدثین نے مختلف ترجمے رکھے ہیں، بعض حدیث مبارکہ میں محدث نے اس کا نامراد کی جگہ ہلاکت کا لکھا، ہلاک اور برباد ہو جائے، کہیں نامراد ہے، ایک ہی مطلب ہے۔ اور تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بد دعا یہ دی کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اللہ سے رو رو کر اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرائے، وہ بھی نامراد برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ لہٰذا اس رمضان میں اپنے اللہ کو رو رو کر راضی کرنے کی فکر کریں۔ بھائی اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب یہ جو ہے کہ رمضان میں جس نے اپنی بخشش کروا کر اور جنت اپنے اوپر واجب نہ کروا سکا، تو وہ بھی ہلاک اور برباد ہو، نامراد ہو۔ اب دل میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی مغفرت کرنا تو اللہ کا کام ہے، جنت میں ڈالنا تو اللہ کا کام ہے، تو ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں تو نہیں۔ تو مراد اس میں یہ ہے کہ ہم نے اللہ پاک جو ہیں وہ صرف ہمارے اختیاری اعمال دیکھیں گے کہ اس کو فکر کتنی تھی، اس کو تڑپ کتنی تھی، اس کو میرا خوف کتنا تھا، اس کے اندر رمضان کا احترام کتنا تھا، اس نے ان قیمتی لمحات کی قدر کتنی کری، گزرتے ہوئے رمضان کی ساتوں کی کیا قدر کری۔ تو بس اس حساب سے جو روئے گا، تقوی سے رہے گا، توبہ استغفار کرے گا، اپنے حت الامکان کوشش کرے گا کہ میں لعلکم تتقون کا مصداق بن جاؤں، اور کبھی خطا ہو گئی تو اس نے توبہ کر لی، تو بس اللہ صرف یہی دیکھیں گے، تو اسی پر ہی انشاءاللہ اللہ پاک اس کا کام بنا دیں گے۔ فکر اپنے اختیار سے فکر کتنی کری، عمل کتنا کیا اپنے اختیار سے، باقی تو سب کچھ اللہ کے اختیار میں، یہ مراد ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو رمضان میں روزہ رکھے، پیٹ میں روٹی نہیں، پیٹ میں چارہ نہیں، جیسے مثل مشہور ہے کہ پیٹ میں پڑا چارہ تو اچھلنے لگا بیچارہ، لیکن روزے میں جب پیٹ میں روٹی نہیں اور بوٹی نہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی روزہ رکھ کر وی سی آر، سینما، عورتوں کو یا کسی امرت کو بری نظر سے دیکھتا ہے، تو سمجھ لو اس ظالم کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یعنی بڑی عجیب بات حضرت نے اس میں فرمائی کہ بھائی دیکھو، کھانا اللہ نے اس لیے بند کرایا کہ پیٹ میں پڑا چارہ اچھلنے لگا بیچارہ، کہ نفس جو ہے وہ زور پکڑتا ہے پیٹ میں جب روٹی اور بوٹی ہوتی، جب کھانا بھی اللہ نے بند کرا دیا اور تمہاری جسم بھی کمزور ہو رہا ہے اور تمہیں فاقے بھوک بھی تمہیں لگ رہی ہے، روزے سے تو شہوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں نا، لیکن اب یہ اللہ نے ایک تقوی کو آسان کرنے کی نہیں بنایا کہ اب نظروں کی حفاظت کرنا اب آسان ہوگا، یہ ہے پالیسی اللہ پاک کی حکمت۔ دیکھیں اب لوگ اتنے ظالم ہیں کہ کھانا بھی نہیں کھایا، کمزوری بھی ہو رہی ہے، نڈھال بھی طبیعت ہو رہی ہے، لیکن لڑکیاں دیکھنا نہیں چھوڑ رہا، عورتیں دیکھنا نہیں چھوڑ رہا، تو بھائی یہ تو پھر عجیب ہی معاملہ ہے پھر تو۔ तो समझ लो इस जालिम को रोज़ा रख के भी जो हरकतें कर रहा है उस जालिम की इस्लाह नहीं हो सकती, इसको तकवे वाली हयात नहीं मिल सकती, क्योंकि अल्लाह ताला के मकसद को पाश पाश कर रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला रोज़े का मकसद बयान फरमा रहे हैं लअल्लकुम तत्तकून, यानी रोज़ा इसलिए फ़र्ज कर रहा हूँ ताकि तुम गुनाह छोड़ दो और तुमको तकवे वाली ज़िंदगी नसीब हो जाए, मगर तुम गुनाह करके रोज़े की फर्जियत के मकसद को फौत कर रहे हो, यानी तुम गुनाह करके रोज़े की फर्जियत के मकसद को फौत कर रहे हो। दोस्तों, किसी के पेट में रोज़ा हो फिर भी वो औरतों को देखता हो, पिक्चर VCR देखता हो, या दिल में गंदे गंदे ख्यालात पकाता हो, ये शख्स लअल्लकुम तत्तकून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला तो फरमाते हैं मैंने रोज़ा इसलिए फ़र्ज किया है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, रोज़े में तुम्हारे नफ्स की हलाल ग़िज़ा भी हमने रोक दी, हलाल ग़िज़ा भी रोक दी अल्लाह ने, ताकि तुम्हारे नफ्स का शिकंजा ढीला हो जाए और नफ्स दुश्मन के हथकंडों से तुम्हारी रूह आज़ाद हो जाए। लेकिन पेट में ग़िज़ा नहीं, भूख और प्यास से निडाल है, मगर वारे सरकश इंसान तू फिर भी अपने गुनाहों के तकाज़ों में मस्त है। मैंने हैदराबाद दक्कन में ऐसे शेर देखे हैं जिनको बहुत दिनों से खाना और गोश्त नहीं मिला था, तो वो बेचारे इतने कमज़ोर हो गए थे कि ऐसा महसूस होता था जैसे सांस भी ना ले रहे हों। उनको भूखा इसलिए रखा जाता है ताकि हमला आवर ना हो, सुभान अल्लाह। तो रमज़ान में नफ्स को इसलिए भूखा रखा जाता है ताकि वो गुनाहों पर हमला करके उन्हें दबोच ना सके, सुभान अल्लाह। चुनांचे रमज़ान शरीफ में इंसान को गुनाहों से दूर रहकर ज़िक्र तलावत नवाफिल और दीगर इबादात में मशगूल रहना चाहिए। रमज़ान शरीफ में सोबत अहलुल्लाह का फ़ायदा, अगर अल्लाह ताला तौफीक दें तो किसी अल्लाह वाले के पास रमज़ान में वक्त गुजार लो, तुम्हारी रूह में डबल इंजन लग जाएंगे। जब रेल क्वेटा जाती है तो चढ़ाई बहुत होती है, इसलिए एक इंजन आगे और एक इंजन पीछे लगता है, एक पीछे से धक्का देता है और एक आगे से खींचता है। तो अल्लाह ताला ने हमें भी दो इंजन दिए कि परदेश में जा रहे हो, मुमकिन है कि परदेश की रंगीनियों में तुम गफलत में मुबतला हो जाओ, तो उससे बचने के लिए दोज़ख का मुराकबा करो ताकि दिल पर एक तरफ से दोज़ख के खौफ की छड़ी लगे, और जन्नत का मुराकबा करो ताकि दूसरी तरफ से जन्नत का शौक़ अपनी तरफ खींचे। इसलिए अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों को तफसील से बयान फरमाया ताकि बंदों को याद रहे कि दुनिया का यह मुजाहिदा चंद दिन का है, फिर हमेशा का ऐश मिलने वाला है। तो अल्लाह वालों की सोबत नेमत मकानी है, तो अल्लाह वालों की सोबत नेमत मकानी है, और रमज़ान शरीफ नेमत ज़मानी है। अल्लाह वालों के साथ रिहाइश हो और रमज़ान का महीना हो तो जब ज़मान और मकान के दो अंजन लग जाएंगे तो अल्लाह के क़ुर्ब का रास्ता जल्द तय हो जाएगा। इसलिए अक्सर बुज़ुर्गों ने मुरीदों को रमज़ान मुबारक में अपने यहाँ इकट्ठा किया। शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़िक्रिया साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ बड़े बड़े उलमा रमज़ान में पहुँच जाते थे, लेकिन जिसको लालच होती है वही पहुँचता है, बग़ैर लालच दुनिया का भी कोई काम नहीं होता। रमज़ान शरीफ के चार खसूसी अमाल, लोग अक्सर पूछते हैं कि रमज़ान में क्या वजीफ़ा पढ़ें, क्या अमल करें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वज़ाइफ़ रमज़ान अता फरमाए हैं तो हमें कोई और वजीफ़ा तलाश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए वजीफ़ों से बढ़कर कोई वजीफ़ा नहीं, इल्ला ये कि वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का बताया हुआ कोई वजीफ़ा हो। रमज़ान मुबारक में जो अमाल कसरत से किए जाएँ उनके बारे में सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। नंबर एक, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना। बुज़ुर्गों ने कसरत की जो तादाद बताई है वो कम से कम 3 तस्बीह है, क्योंकि अरबी में जमा 3 से शुरू होता है, यानी लफ्ज़ कसरत का इतलाक़ जो होता है वो कम से कम 3 के ऊपर होता है। तो अगर कोई ज़िक्र हम 300 दफ़ा कर लेते हैं तो उसमें हमारा शुमार फिर कसरत ज़िक्र करने वालों में हो जाएगा। इसी तरह नंबर दो, कलमा इस्तग़फ़ार की कसरत। नंबर 3, कसरत से जन्नत मांगने की दुआ। नंबर 4, दोज़ख़ से कसरत से पनाह मांगना। तो ये 4 अमाल, 4 वजीफ़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए। दोबारा सुन लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत, कलमा इस्तग़फ़ार की कसरत, और कसरत से जन्नत मांगने की दुआ। नंबर 4, दोज़ख़ से कसरत से पनाह मांगना। तलावत क़ुरान पाक की कसरत। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से क़ुरान पाक का दौर करते थे। سید الانبیاء کا دور قرآن سید الملائکہ کے ساتھ تھا. بڑے لوگ بڑے کے ساتھ کام کرتے ہیں. ایک تمام ملائکہ کا سردار, دوسرا تمام انبیاء کرام کا کے سردار. جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار, رسول اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبروں کے سردار. یہ دونوں حضرات رمضان المبارک میں قرآن پاک کا دور کرتے تھے. تو قرآن پاک کا دور کرنا سنت جبرائیلی اور سنت پیغمبری, لہٰذا رمضان کے مہینے میں حافظ قرآن حضرات قرآن پاک کا جو دور کرتے ہیں یہ دور ثابت بالسنہ ہے, سنت پیغمبر اور سنت جبرائیل علیہ السلام ہے. چونکہ رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آپس میں قرآن پاک کا دور ہوتا تھا, تو چنانچہ سنت کو بھی زندہ کیا جائے. میرے شیخ ثانی حضرت مولانا شاہ ابر الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جہاز میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک ایک سورت کا آپس میں دور کر لو, لہٰذا الحمدللہ شریف کا یا کسی سورت کا دور کرا دیتے ہیں اور اس سنت کو زندہ کرتے ہیں. اجرت پر تراویح پڑھانے کا حکم, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اجرت پر تراویح پڑھانے کا حکم. حافظ قرآن کا درجہ بہت بڑا ہے, یہ اشراف امت ہیں, یعنی امت کے بڑے لوگ قرار دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو رمضان میں گھوڑوں کی طرح بکوانا نہیں چاہیے گھوڑوں کی طرح. میرے شیخ ثانی حضرت مولانا ابر الحق صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہندوستان کے شہر حیدرآباد دکن میں شعبان میں حافظ جمع ہو جاتے ہیں, اس کا نام ہے حافظوں کی منڈی. وہاں سیٹ لوگ بھی آتے ہیں اور ان سے تھوڑا سا قرآن پاک سنتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں کتنے پیسے لوگے. وہ کہتا ہے 5,000 لوں گا. سیٹھ کہتا ہے کہ نہیں بھائی, آپ نے بہت زیادہ ریٹ بتا دیا ہے, تھوڑا کم کیجیے. غرض وہاں پر بھاؤ تاؤ ہوتا رہتا ہے, اس لیے اس کا نام حافظوں کی منڈی ہے. نینی یہ طنز کیا ہے حضرت ابر الحق صاحب رحمۃ اللہ نے. بہشتی زبر کے 11 حصے میں ہے, اگر کوئی حافظ پیسے لیے بغیر قرآن نہیں سناتا تو علم طرح کیفہ سے تراویح پڑھ لو, تو علم طرح کیفہ سے تراویح پڑھو. قرآن پڑھا کر اجرت لینا اور دینا دونوں حرام ہیں. اگر کسی مسجد میں پورا قرآن سنانے والا بغیر اجرت کے کوئی حافظ نہیں ملتا تو علم طرح کیفہ سے تراویح پڑھ لو, کیونکہ مسجد میں تراویح کے اندر ایک قرآن مکمل کرنا سنت موقعہ ہے, اور تراویح سنانے کے لیے حافظ یا قاری کو پیسے دینا حرام ہے. لہذا حرام کام کر کے سنت موقعہ کی تکمیل جائز نہیں. ایسی سنت موقعہ شریعت نے معاف کر دی, اس سے بہتر ہے کہ علم طرح کیفہ سے تراویح پڑھ لو. میں مسجد میں کہتا ہوں کہ جو حافظ اس کی ہمت کر لے کہ بغیر پیسے کے تراویح پڑھاؤں گا تو انشاءاللہ تعالی اس کو اللہ تعالی غیب سے اتنا دے گا, ایسا حجمرہ نصیب کرے گا, رزق کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ وہ حیران رہ جائے گا. اللہ کو راضی کر کے تو دیکھو. میرے یہاں ایک حافظ نے تراویح میں قرآن سنایا تھا, انہوں نے پیسے نہیں لیے, نہ ان کو کپڑوں کا جوڑا دیا گیا, حالانکہ ان کو پیسوں کی شدید ضرورت تھی. باپ مر چکا تھا, بہن جوان تھی اور اس کی شادی کے لیے رات دن رو رہا تھا. تو دوستوں میں کیا عرض کروں, آج صبح ایک شخص آیا اور 17,000 روپے دے گیا, جبکہ اس نے کسی سے سوال بھی نہیں کیا تھا. اس لیے واللہ مسجد میں کہتا ہوں کہ شریعت پر عمل کر کے اپنے اللہ کو راضی تو کرو, پھر دیکھو کہ اللہ تھوڑی سی روزی میں بھی برکت ڈال دے گا. تو جو حافظ معاوضہ لے کر قرآن سنائے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں, وہ قرآن کو بیچتا ہے. تراویح پڑھانے کی اجرت لینا کسی طرح جائز نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے لیے نہیں مانگتا مگر میرے مدرسے کے لیے کچھ کر دیجئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بھی ایک قسم کا معاوضہ ہے, چاہے وہ مدرسے سے ہی کے لیے لیا ہو, کیونکہ اگر وہ قرآن نہ سناتا تو مدرسے کو کوئی چندہ نہیں ملتا, لہذا مدرسے کا چندہ اسی معاوضے میں آ گیا. بعض حافظ کہتے ہیں کہ میں نے خلوص سے سنا ہے اور دینے والے نے بھی خلوص سے دیا ہے. اب اس سے یہ پوچھا جائے, اگر آپ کسی سال اس مسجد میں نہ سناؤ تو کیا مسجد کی کمیٹی پھر بھی تمہیں منی آرڈر کر کے پیسے بھیجے گی؟ تب پتہ چلے گا یہ پیسہ انہوں نے خلوص سے دیا تھا یا قرآن پاک کا معاوضہ ہے. رمضان شریف کا جوش عارضی ثابت نہ ہو. ہماری یہ رمضانی رمنمازی ہمارے یہ رمضانی نمازی اور ہمارا یہ رمضانی جوش و خروش سارا سال باقی رہے، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو عید کا چاند دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے عید مناتے ہیں۔ مہینہ بھر تو حلال نعمتوں سے بھی رکے رہے، مگر جس دن چاند دیکھا اس دن اتنی خباستیں کی سینما کی لمبی باہر لمبی لمبی لائنیں لگ گئیں، وی سی آر ٹی وی اور جتنے گندے کاموں سے مہینہ بھر رکے ہوئے تھے چاند دیکھتے ہی دوبارہ شروع کر دیے۔ اس کی مثال اس بلی کی طرح ہے جو ایک دم ناخن کھول لیتی ہے، بلی اپنے ناخن پنجوں کے اندر چھپا کر رکھتی ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا اس کے ناخن بھی ہیں، لیکن جب غصے میں آتی ہے تو اپنے ناخن باہر نکال لیتی ہے، اور اس کے ناخن اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ جس کا چاہے منہ نوچ لے۔ ایسا ہی حال نفس کا ہے، اور اس کو ذرا سا ڈھیلا چھوڑا تو سمجھ لو کہ خیریت نہیں، اور جب نفس ڈھیلا ہو جاتا ہے تو اس پر اللہ کے قہر و غضب کے ڈھیلے برستے ہیں، سبحان اللہ، اور جب نفس ڈھیلا ہو جاتا ہے تو اس پر اللہ کے قہر و غضب کے ڈھیلے برستے ہیں، یعنی ذلت کی مار ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو اس مبارک مہینے میں عہد کر لیے کہ جیسے رمضان کے مہینے میں ہم تقوی سے رہے، ویسے ہی سارا سال بھی ہم تقوی سے رہیں گے۔ جیسے آج مسجد نمازوں سے بھری ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سارا سال نمازیوں سے بھری رکھے، اور جیسے رمضان کے مہینوں میں مسجدوں میں مجمع ہوتا ہے، اللہ ایسا مجمع پورا سال رکھے، اور اس مہینے میں عبادت کی جتنی توفیق ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ہم سب کو ایسا ہی عابد زاہد پرہیزگار متقی اللہ والا بنا دے، آمین۔ یہ بڑی حضرت نے اہم دعا فرمائی ہے، کیونکہ بھائی ہم دیکھتے ہیں اکثر بہت پیارا شعر کسی اللہ والے بزرگ نے فرمایا، ابھی تو مسجدوں میں رونقیں نظر آ رہی ہیں لیکن رمضانوں کے بعد کیا دیکھیں گے آپ، بلکہ چاند رات کو ہی دیکھ لیجیے گا یا عید والے دن ہی، اس سناٹا ہوتا ہے مسجدوں میں، چند ایک دو صفحے ہوتی ہیں، رونقیں سب ختم۔ تو بہت ہی پیارا شعر ہے کہ مسجد کی آدھی صفیں، مسجد کی آدھی صف اور خالی وضو خانے، مسجد کی آدھی صف اور خالی وضو خانے، خدا سے پوچھ رہے ہیں مسلمان ختم ہو گئے یا رمضان، مسجد کی آدھی صف اور خالی وضو خانے، خدا سے پوچھ رہے ہیں کہ رمضان ختم ہو گئے یا مسلمان، کہ بھائی رمضان ختم ہوئے ہیں وہ تو چلا گیا رمضان کا مہینہ، لیکن مسلمان تو وہی کے وہی موجود ہیں سب گھروں میں، تو کہاں چلے گا مسلمان۔ تو اس لیے بعض مشائخ نے فرمایا کہ بھائی جو رمضان کے لیے عبادت کرتا تھا، جو رمضان کے لیے عبادت کرتا تھا، رمضان تو چلے گئے تو اس کی عبادت بھی رمضان کے بعد ختم ہو جائے گی، کیونکہ رمضانوں کی نہیں کر رہا تھا وہ تو عبادت، اور جو اللہ کے لیے کر رہا تھا وہ رمضان کی اور غیر رمضان کی اس کی روٹین وہی ہوگی جو اللہ کے لیے خالص کرتا تھا عبادت۔ تو بھائی ہم رمضانی نہ بنے، سیزنل مسلمان نہ بنے، رمضان آئے تو بعض لوگ پہلی صف میں ماشاءاللہ نظر آتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں، ٹوپی ہاتھ ان کے ٹوپی پہنی ہوتی ہے اور تسبیح ہوتی ہے، اور اس سال میں ایک ہی دفعہ دکھتے ہیں وہ رمضانوں میں، اس کے بعد گیارہ مہینے کا ہے کچھ نہیں پتہ، تو رمضان کی نہیں عبادت ہو رہی ہے، وہ اللہ کی نہیں عبادت ہوتی ہے، تو بھائی وہ تو 365 دن ہے۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے، آخر میں بس دعا کر لی حضرت والا کی دعا ہے، حضرت والا فرماتے ہیں اس میں کتاب میں، اب دعا کیجیے کہ یا اللہ رمضان کی برکت سے اور صالحین جو اس وقت یہاں موجود ہیں ان کی برکت سے ہم سب کو اللہ والی زندگی عطا فرما دے، توفیق توبہ نصیب فرما دے، اے خدا اپنی ایسی محبت دے دیجیے کہ ایسی ہمت اور ایسا ایمان اور ایسا یقین نصیب فرما دیجیے، اور ہماری جان کو اپنی ذات پاک کے ساتھ اس طرح سے چپٹا لیجیے کہ ہم ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں، اور ایک سانس کی نہیں بھی آپ سے غفلت میں مبتلا نہ ہوں، ہماری پوری زندگی اور دن اور رات آپ پر فدا ہو جائے، اللہ والی زندگی اور اپنی رضا کی حیات ہم سب کو نصیب فرمائے، اے اللہ آپ ہم سب سے خوش ہو جائیے، اور ہمارے بزرگوں کو بھی ہم سے خوش رکھیے، ہمارے مشائخ کو بھی ہم سے خوش رکھیے، ہمارے مرشد کو بھی ہم سے خوش رکھیے، یا اللہ اس مجمع کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ مبارک مہینہ ہے، یا اللہ ہم سب بندے آپ کے نام پر روزہ رکھے ہوئے ہیں، آپ کے نام پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور دور دور سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، آپ کریم ہیں، ہاتھ اٹھائیں نا بھائی، آپ کریم اور کریم کی شان یہ ہے کہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محروم واپس نہ کرے، یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے اور آخرت بھی بنا دیجئے، ہم کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوستوں کو سلامتی اظہر، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، اور سلامتی اعظہ اور سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے، اور قیامت کے دن بے حساب مغفرت فرما دیجیے۔ فلسطین مسلمانوں کی بھی دعا کیجیے، اللہ ان کو عافیت عطا فرمائے، یہودیوں کو تباہ برباد کر دے، سفیفتی سے مٹا دے، عبرت کا نشان بنا دے، یا اللہ جمعے کے دن کی موت نصیب فرمائیے، جب بھی آپ ہم کو موت دیجیے، جمعے کے دن موت دیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے بشارت ہے کہ جس کو جمعے کے دن یا رات میں موت آئے گی اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، قیامت کے دن بھی اس کا حساب نہیں ہوگا اور اس کو شہیدوں کا درجہ ملے گا۔ اے اللہ، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ کرم تو آپ کی رحمت سے متعلق ہے، لہٰذا اے اللہ جب بھی ہمارا وقت آخر آئے اپنی رحمت سے ہمیں جمعے کے دن کی موت نصیب فرمائیے۔ آمین۔ اے اللہ، اس مبارک مہینے کو تقوی کے ساتھ اس طرح گزارنے کی توفیق دے دیجیے کہ ہم سے ایک گناہ بھی نہ ہو، اور اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، روزوں کو قبول فرمائیے، اعتکاف کرنے والوں کا اعتکاف قبول فرمائیے۔ اے اللہ، بن مانگے سب کچھ عطا فرما دیجیے، اذان ہونے والی ہے اس لیے زیادہ دعا مانگنے کا وقت نہیں، لیکن ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ نے سکھایا تھا کہ جب وقت نہ ہو یا تھک جاؤ تو اللہ سے کہہ دو، یا اللہ اتنا تو میں نے مانگ لیا ہے، اب آپ بغیر مانگے سب کچھ عطا فرما دیجیے۔ آمین۔ زمین و آسمان کے خزانے جن سے آپ اور آپ کی ذات بے نیاز ہے ہم سب پر برسا دیجیے، اور شکر گزاری بھی نصیب فرمائیے، کبر اور بڑائی کا نشہ بھی نہ آئے اور دکھلاوا بھی نہ ہو، اور ہم سب کو اخلاص بھی عطا فرما دیجیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم